मेरे अत्यंत प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। आज 30 नवंबर 2018 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं पुष्पा गुप्ता गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, संतोष साव आपका गांव है सुरसंड जिला सीतामढ़ी बिहार से, चंदन कुमार आपका भी गांव है सुरसंड जिला भी है सीतामढ़ी बिहार से, अनीशा लक्ष्मी आप दिल्ली से हैं और चंद्र प्रकाश मौर्य गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो पुष्पा, संतोष, चंदन, अनीशा और चंद्र प्रकाश आप सभी 5 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत और बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं कुछ सूचनाएं विधिवत तरीके से आप सबको दिया करता हूं। तो सूचनाएं इस प्रकार से हैं कि सैटरडे और संडे को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन कल आप सबको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी जैसे कि रोजाना मिलती हैं। इसके साथ ही कुछ एडिशनल आपको रीडिंग मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, कुछ अभ्यास के लिए भी काम दिया जाता है। योजना के आपको 2 आर्टिकल मिलेंगे इंग्लिश में और इंग्लिश और एक हिंदी में, मतलब योजना के टोटल 2 आर्टिकल आपको मिलेंगे, एक हिंदी और एक इंग्लिश। और ठीक इसी तरह से कुरुक्षेत्र के आपको टोटल 2 आर्टिकल्स मिलेंगे, एक हिंदी और एक इंग्लिश का। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आपको वीकली क्वेश्चन जो मेंस के पैटर्न पर होता है वो दिया जाएगा। और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। सूचना के बाद तो अब मैं आपको मुख्य विषय की सूचना दे दूं। फ्रेंड्स, मुख्य विषय में आज हम लोग थोड़ा सा भारत की अंतरिक्ष में जो उपलब्धियां रही हैं, खासकर अभी जो कल सैटेलाइट छोड़ा गया है, प्रक्षेपित किया गया हाइसिस, उसको बेस बनाकर कुछ बातें करेंगे। लेकिन आइए पहले थोड़ी सी दूसरी खबरों को हम देख लेते हैं। एक बड़ी खबर है फ्रेंड्स, जो आपने डीडी न्यूज पर स्पेशली देखा होगा कि महाराष्ट्र सरकार ने जो महाराष्ट्र का जो मराठा समुदाय है उसके लिए 16% का आरक्षण संबंधी जो विधेयक है वहां के विधानमंडल ने पारित कर दिया है, यानी कि दोनों सदनों ने पारित कर दिया है। और अब शिक्षा के क्षेत्र में और साथ ही सरकारी नौकरियों में इस समुदाय को, यानी कि मराठा समुदाय के लोगों को 16% आरक्षण दिया जाएगा। अगर 16% को जोड़ दिया जाए, महाराष्ट्र में पहले से 52% है तो टोटल 68% का आरक्षण हो गया है। जो महाराष्ट्र है उसमें मराठा समुदाय के लोगों की जो टोटल आबादी है, टोटल आबादी का 32.4% है, यानी मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि एक तिहाई आबादी मराठा समुदाय की है। और इसमें एक चीज आप और पाएंगे कि अगर हम इसको चलिए 100% मान लें तो इसमें से 79%, मतलब 100 मराठा समुदाय में से 79 लोग खेतीहर हैं, मतलब खेतों में काम कर रहे हैं। आप देखिए कि जो भारत का परसेंटेज है खेतीहर में काम, खेती में काम करने वालों का, वो लगभग 56-57% है, यानी कि 100 में 56-57 लोग खेती के काम में लगे हुए हैं। लेकिन मराठा समुदाय में 100 में 79 लोग लगे हुए हैं, यानी कि ज्यादा है, राइट। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे आप आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं और आंकड़ों की यही सबसे बड़ी खासियत भी होती है। आप जानते हैं कि जो खेती से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी आमदनी अपेक्षाकृत कम होती है। खेती तो एक प्रकार से अब नुकसान का सौदा भी हो गया है, यानी कि उनका आर्थिक स्तर काफी निम्न हो जाता है। तो ये आंकड़े इस बात को सिद्ध करते हैं कि जो मराठा समुदाय के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। तो ये एक मैंने आपको तथ्य बताया। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट होगा थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन कंटेंट के रूप में यह एक तथ्य है जो आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, जो स्टूडेंट महाराष्ट्र सिविल सर्विस में अपीयर होंगे उनके लिए डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। मित्रों, अभी हम खेती की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, तो इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है जो डीडी न्यूज में और आपके रेडियो न्यूज में भी नहीं थी, लेकिन अखबारों में इसे बहुत ही प्रोमिनेंटली स्थान मिला है, और वह है किसान आंदोलन को लेकर। दिल्ली में एक जबरदस्त रूप से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है और इसमें 210 किसान संगठन शामिल हैं, और इन आंदोलनकारियों का कहना है कि अभी जो संसद का अधिवेशन होना है उस अधिवेशन में बकायदे किसानों की समस्याओं पर चर्चा की जाए, भले ही इसके लिए विशेष सत्र क्यों न बुलाना पड़े लेकिन किसानों के मामले पर चर्चा होनी चाहिए। अगर आप व्यावहारिक तौर पर देखें तो आपको भी लगेगा कि हाँ इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि किसानों की समस्याओं को लेकर के आप लगातार अखबारों में पढ़ रहे हैं, अपने सामने देख भी रहे हैं, और अगर आप गांव के हैं तो आप उसे अनुभव कर भी रहे हैं। ये जो संगठन है लगभग 26 करोड़ किसान इससे जुड़े हुए हैं, तो आप इस संगठन की ताकत को समझ सकते हैं, और मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि सरकार भी अब इनकी मांग की उतनी उपेक्षा नहीं कर सकेगी। दोस्तों, अभी जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां के कुछ किसानों से व्यक्तिगत तौर पर जब मुझे बात करने का मौका मिला तो मैंने देखा कि उनमें अपनी स्थिति को लेकर के जबरदस्त असंतोष है। हालांकि सरकार उनकी आय को सुरक्षित करने के लिए, बढ़ाने के लिए अलग अलग उपाय कर रही है, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया, साथ ही फसल बीमा योजना शुरू कर दी गई, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भावांतर योजनाएं लागू की गई, आशा शुरू किया गया। लेकिन सच बात यह है कि ये जितनी भी योजनाएं हैं इनकी दो सबसे बड़ी कमजोरी हैं। पहला तो यह है कि इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर ये बहुत पुअर है, बहुत कमजोर है। फसल बीमा योजना के बारे में यह सुनने में आता है कि या तो बहुत बड़े किसानों को उससे फायदा मिल रहा है या जो बीमा कंपनियां हैं वो इसका फायदा उठा रही हैं, लाभ उठा रही हैं, किसानों को इनफैक्ट बिल्कुल फायदा नहीं मिल रहा है, और निम्न श्रेणी के जो किसान हैं, जो छोटे किसान हैं आप कह लीजिए, उनको तो कोई फायदा मिल ही नहीं रहा है। ये इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई देती है, तो बट नेचुरल है कि उससे क्या लाभ होगा। दूसरी जो लिमिटेशन है कि ये टेम्परेरी इलाज है, ये सच पूछे तो स्थायी समाधान इनमें दिखाई नहीं देता है। सरकार इतना पैसा खर्च करती है, सब कुछ होता है, लेकिन किसानों की समस्या ज्यों की त्यों रहती है। पिछले इतने सालों में आप देखिए कि किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, और 3.5 से 4 लाख लोग उदारीकरण के बाद 3.5 से 4 लाख लोग आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है, चूंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर अभी भी आधारित है इतने औद्योगिकीकरण के बाद, तो इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, ये किसानों के बारे में है। इस टॉपिक पर आप ध्यान दीजिएगा, और जब भी आपको कुछ पढ़ने को मिले तो आप ध्यान से उसे पढ़िएगा भी। अगली जो खबर है फ्रेंड्स, वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को लेकर के है, सीएसओ। कल अगर आपने डीडी न्यूज देखा हो तो आपको लगा होगा कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। कितनी चर्चा होती है, क्या होती है, इस पर अब हम लोग आगे विचार करेंगे अगर ये विषय जोर पकड़ता है तो। लेकिन आपको केवल सूचित करने के लिए मैं ये बता दूं, सूचना भर दे, जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है स्टेटिस्टिक्स जारी करता है खासकर आर्थिक व्यवस्था के, तो जब हम जीडीपी वगैरह की बात करते हैं कि हमारी जीडीपी कितनी है, ग्रोथ रेट कितना है, तो बट नेचुरल है कि हमको एक आधार वर्ष तो बनाना पड़ेगा। तो अभी तक ये आधार वर्ष था 2004-05, ठीक है, जब पहली सरकार थी यानी कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो इसे बदलकर कर दिया गया 2011-12, ठीक है, ये किया ही जाता है। उसको लेकर के विवाद है कि अगर 2011-12 के आधार पर उस सरकार यानी कि पुरानी सरकार, पिछली सरकार कहना चाहिए, कि उसका मूल्यांकन किया जाए तो उनकी जो वृद्धि दर है, जीडीपी है, वो बहुत कम हो जाएगी, और अभी की इतनी है। इसके पीछे राजनीति केवल इतनी है जिसका लोग लेकर के विरोध कर रहे हैं, और आज मैं आपको उसके लिए एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं कि ठीक है, पिछले जो भी आंकड़े हों, अब उससे क्या लेना देना है, आपने एक बेस ईयर बना लिया है, अब आगे वृद्धि की बात की जाए। लेकिन देखिए, तो पॉलिटिक्स है, वहां सारी चीजों को आप रोक भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर सरकार ये दिखाना चाहती है कि हमारी ये उपलब्धियां रही हैं, और साथ ही वो तुलनात्मक रूप में भी अपनी उपलब्धियों को प्रस्तुत करती है कि पिछले सरकार की यह स्थिति थी और हमारी यह स्थिति है। लोकतंत्र में स्वाभाविक तौर पर यह होता ही होता है, लेकिन हम देखेंगे कि यह आर्थिक रूप से कितना एकेडमिक हो पाता है यह विषय, उसके आधार पर इसके बारे में निर्णय लेंगे। मित्रों, G20 सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। आज मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का एक बहुत अच्छा लेख प्रोवाइड कर रहा हूं G20 को लेकर के, प्लीज आप उसे जरूर पढ़िएगा। मैं अभी G20 पर बात नहीं कर रहा हूं, सम्मेलन हो जाए उससे जो आउटकम होंगे उसके जो रिजल्ट निकल करके आएंगे तब हम लोग G20 के बारे में बातें करेंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं आज के मुख्य विषय पर कि भारत के अंतरिक्ष में क्या उपलब्धियां। मैं आपको इतिहास नहीं बताने जा रहा हूं, अभी जो रही है उसकी बात कर रहा हूं। कल आपने न्यूज में सुना होगा और डीडी न्यूज में तो काफी विस्तार से इसके बारे में बताया भी गया था और काफी खूबसूरत डिस्कशन था उसमें, अगर आपने सुना हो तो। बहुत बहुत बेसिक लेवल का डिस्कशन, बहुत ही प्यारा डिस्कशन जो जनरल स्टडीज के लिए जरूरी होता है। तो कल श्रीहरिकोटा से एक उपग्रह लॉन्च किया गया है, भू पर्यवेक्षण उपग्रह। देखिए, भू पर्यवेक्षण उपग्रह यानी कि एक ऐसा सैटेलाइट, एक ऐसा उपग्रह जो भूमि का पर्यवेक्षण करेगा, सर्वे करेगा, यानी कि उस पर आंख टिकाए रखेगा, यानी कि उसे लगभग 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा गया है, वो घूमता रहेगा और पूरी धरती को देखता रहेगा। इसीलिए रेडियो न्यूज में जब आपने सुना होगा तो रेडियो न्यूज में एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया गया कि यह दिव्य दृष्टि है। बड़ा अच्छा प्यारा शब्द है दिव्य दृष्टि, भारतीय इसको आराम से समझ जाएंगे कि मतलब ऊपर है और वो पूरी धरती पर निगाह रखे हुए है। डिस्कशन में उन्हीं उसी के लिए बहुत अच्छा शब्द जो एक उसमें पत्रकार आए थे, विज्ञान पत्रकार, उन्होंने कहा था कि ये मिनी आई है लेकिन बहुत पैनी आई है, मतलब एक छोटी आंख तो है, बहुत ही छोटी सी आंख है लेकिन बहुत पैनी आंख है और इसका नाम है फ्रेंड्स हाइसिस। ये कंबाइंड वर्ड है और इसका अगर इसको आप विभाजित करेंगे शब्द के आधार पर तो होगा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। यानी कि ये बहुत बारीक से बारीक चीज के भी चित्र भेजेगा और बहुत स्पष्ट चित्र भेजेगा। कितने चित्र भेजेगा इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। एक प्रश्न पूछा गया था डिस्कशन में कि इससे क्या फायदा होगा, तो उन्होंने कहा था कि वो तो चित्र भेजेगा, उन चित्रों का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं, हम इससे क्या लाभ उठा पाएंगे उस पर डिपेंड करेगा। वो फॉरेस्ट के चित्र भेजेगा, धरती के चित्र भेजेगा, एग्रीकल्चर के चित्र भेजेगा, वाटर बॉडीज के चित्र भेजेगा। अब हम जब उन चित्रों को देखेंगे और देखने के बाद लगता है कि हम में कहां कमी है और कहां क्या किया जाना चाहिए, तो सब कुछ उसके उपयोग पर डिपेंड करेगा। तो ये जो धरती है उसके सतह का अध्ययन करने वाला है और बट नेचुरल है, इसका उपयोग हम रणनीतिक उद्देश्यों के लिए भी किए जा कर सकते हैं, यानी कि हमारे जो बॉर्डर हैं उस बॉर्डर पर क्या चल रहा है, कहां घुसपैठ हो रहा है, कहां किस तरह के कैंप हैं, उस पर भी नजर रखी जा सकेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने न्यूज में यह भी सुना है फ्रेंड्स कि केवल भारत का हाइसिस ही नहीं छोड़ा गया है PSLV C-43 रॉकेट से, बल्कि 30 और सैटेलाइट छोड़े गए हैं और जिसमें अमेरिका के ही अकेले अमेरिका के 23 हैं, छोटे छोटे सैटेलाइट हैं, दूसरे देशों के भी हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा ये तो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री हैं, फिनलैंड नीदरलैंड ये डेवलप्ड कंट्री हैं, इनके भी उसमें सैटेलाइट थे। और भारत इस क्षेत्र में इसलिए लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है कि अगर दुनिया के किसी दूसरे देश में अगर इन सैटेलाइट्स को छुड़वाया जाए जिनके पास ये क्षमता है, उनकी तुलना में भारत में वही सैटेलाइट छुड़वाने से 30% लागत कम आती है, मतलब 30% कम कीमत पर हम छोड़ सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहां मैं एक बात आपसे और बताना चाहूंगा, उसी डिस्कशन में ही था कि भारत इसरो जो है हमारा G-SAT-11 लॉन्च करने वाला है लेकिन इसकी लॉन्चिंग फ्रेंच गुआना से होगी। आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ सकता है कि हम क्यों नहीं लॉन्च कर सकते, उसका सीधा सा उत्तर है देखिए कि ये जो सैटेलाइट है इसका जो वेट है, वजन है, वो 5.86 टन है, मतलब ये कह लीजिए कि लगभग 6,000 किलो है और हमने अभी जो छोड़ा है इसका वजन तो बहुत ही कम है, तो हमारे पास अभी इतने वजनदार सैटेलाइट को या इतनी भारी सैटेलाइट को छोड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हम इस क्षमता को हासिल कर लेंगे। तो इसलिए ये कहा गया है कि चूंकि इसका वजन ज्यादा है, आपको कहना है या समझना है क्योंकि इसका वजन ज्यादा है इसीलिए फ्रेंच गुआना से ये छोड़ा जा रहा है। और आपको मालूम है कि गगनयान के लिए हम काम कर रहे हैं, चंद्रयान के लिए काम कर रहे हैं, और जनवरी के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली चंद्रयान 2 भी छोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों, डिस्कशन में आपने महसूस किया होगा कि दोनों डिस्कशन करने वाले हमारे विद्वान इस बात पर बहुत जोर दे रहे थे कि खासकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भारत है अब विश्व में स्थापित हो चुका है और लोग भारत की सफलताओं से आश्चर्यचकित हैं और खुश भी हैं। तो मित्रों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का जहां तक सवाल है, मैं बहुत सी क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिएगा। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं केबी मीना, प्राची डिमरी, आप हैं श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से, शुभम ठाकरे सिवनी मध्य प्रदेश से, रंजीत कुमार उन्नाव उत्तर प्रदेश से, प्रियंका साव और वेद प्रकाश पटेल, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करना चाहूंगा। 2 दिनों का बीच में अवकाश है, 2 दिनों के बाद फिर आप सबसे मुलाकात होगी, 2 दिनों की अनुमति भी चाहूंगा। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।